नमस्कार, आज फिर आप सबका स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में। याद होगा पिछली कड़ी में हमने एक भयावह सच को देखा था, एक ऐसे अक्स को देखा था, एक ऐसे चित्र को देखा था जो हमारे आसपास हो रहा है, हमारे समाज में, हमारे आसपास पर्यावरण में हो रहा है, और वो सच काफी डरावना था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तब हमें ये पता चला था कि धरती या हमारे समाज का, हमारी पूरी जो दुनिया है उसका विनाश नहीं होगा बल्कि परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन की तरफ ही हम अग्रसर है। क्या होगा ये परिवर्तन, आने वाला वक्त कैसा होगा, इसी पर कुछ और बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हर बार की तरह इस सफर में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
एक सच को हमने देखा था, काफी भयावह था सिस्टर शिवानी। ऐसा लग रहा था कि सचमुच सब खत्म होने वाला है, हम में से हर कोई शायद आज इस बात पर खड़ा है कि पता नहीं अगला पल क्या होगा। लेकिन आपने एक आश्वासन दिया था कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है ये कहा जाता है। क्या होगा वो परिवर्तन, आने वाला वक्त क्या कह रहा है?
आने वाले वक्त को समझने के लिए हमें समय को समझना पड़ता है कि टाइम, हाउ दिस टाइम रियली मूव एंड व्हाट इज टाइम, यू नो, बिकॉज समय के बारे में, क्रिएशन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज मानी जाती हैं, बहुत सारी थ्योरीज को अभी भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट टाइम, देन वी विल अंडरस्टैंड के जो बीता वो क्या था और जो आने वाला है वो क्या है, और जो अभी चल रहा है वो कैसे बिल्कुल सही है। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दिस विल गेट इंटीग्रेटेड वेरी नाइसली। टाइम अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली जस्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यू नो, या दो इवेंट्स के बीच का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो टाइम है, समय जो बीत गया। एक बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो हम मेजर करते हैं वो एक डे है, अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, 24 आवर्स। फिजिकल नेचर में जितना भी हम परिवर्तन देखते हैं समय के अनुसार वो सब साइक्लिक है, यू नो, दिन और रात का चक्र, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद फिर से सुबह। अब इसी को बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा साइकिल को, तो वी टेक द साइकिल ऑफ हाउ डज वन ईयर, तो एक साल भी चार स्टेजेस से गुजरता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर।
ऋतुओं की बात अगर हम करें
तो विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग, देयर इज नो एवर एनी क्वेश्चन कि इसके बाद अब क्या होने वाला है। रात के बाद कभी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इन साइकिल्स को हम हमेशा देखते आए हैं। तो सारे जो प्रकृति में समय का परिवर्तन है वो सब कुछ साइक्लिक है,
बहुत फिक्स्ड है, एक्चुअली
फिक्स्ड है, और बहुत एक्यूरेटली वो साइकिल मूव ही करता जाता है। अब इसमें हम कहें कि ये शुरू कब हुआ, क्योंकि अगर कभी शुरू होगा तो इसका मतलब वो एंड भी होगा। तो एक साइकिल का भाव ही ये है कि टू अ साइकिल देयर इज नेवर एनी बिगिनिंग और एनी एंड, क्योंकि हर पॉइंट को जाकर इट्स इटर्नल। द वर्ल्ड ड्रामा, इट नेवर गेट्स क्रिएटेड एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट्स साइक्लिक। लेकिन जहां समय की बात ऑन अ बिगर सर्कल, यू नो, एक दिन का चक्र हमने देखा, फिर एक वर्ष का भी चक्र हमने देखा, अब इसी को डिटैच होकर और बड़ा पिक्चर देखें कि द वर्ल्ड साइकिल, हाउ वुड दैट मूव, दैट विल ऑल्सो भी साइक्लिक। लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान अभी भी उसको लीनियर फैशन में लेता है कि द अर्थ वॉज क्रिएटेड एंड दैट्स वाई टूडे वी आर टॉकिंग ऑफ द अर्थ गेटिंग डिस्ट्रॉयड।
नहीं तो वो जो बिग बैंग थ्योरी है या जो बात ही कही गई है कि किस तरह से पृथ्वी का जन्म हुआ था,
राइट,
तो वैसे नहीं जन्मी थी।
सी अगेन वी आर नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, लेकिन साइंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले हमें बताया गया था कि पृथ्वी फ्लैट है, राइट, और कितना समय तो यही सोच के चलते रहे ना, द अर्थ इज फ्लैट। फिर साइंस ने एक दिन बताया द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज सर्क्यूलर। तो इसी तरह टाइम इज साइक्लिक, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हुई, बिग बैंग थ्योरी जैसे हुई, लेकिन इन थ्योरीज को भी अभी भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है, और वो भी साइंटिस्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज साइंस इज अ कंटिन्यूस रिसर्च प्रोसेस। तो हर थोड़ी समय के बाद आप जो रिसर्च करेंगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए एविडेंस मिलेगी, जिससे आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा। इनफैक्ट रिसेंटली ही इन द ईयर 2002 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दो साइंटिस्ट हैं, पॉल स्टिनहर्ड एंड नील ट्यूरोक, जिन्होंने ये बिग बैंग थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, उसको चैलेंज किया है. एंड दे से टाइम इज इटर्नल, इट इज एन इटर्नल साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड रीबर्थ. वो कोई ना क्रिएट हुआ था ना कभी फिनिश होगा, इट इज एन इटर्नल साइकिल ऑफ रीबर्थ. तो वी नीड टू नाउ लुक एट इट इन अ बिगर पिक्चर कि जैसे दिन और रात का साइकिल, ऋतुओं का साइकिल, वैसे ही एक थोड़ा उससे बड़ा साइकिल, यू नो, ये विश्व, ये कब शुरू हुआ या क्या ये कभी शुरू भी हुआ था या क्या ये कभी खत्म होने वाला है, या ये भी एक साइकिल ही है, क्योंकि समय का ही तो खेल है ना सारा. कल आज और कल हम कहते हैं, तो कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होने वाला है. ये क्वेश्चंस जब आंसर हो जाते हैं तो भय, जितना भी हमने देखा पिछली बार कि इतना सारा जो भय जो क्रिएट हो जाता है वो सारा फिनिश हो जाता है.
तो अल्टीमेटली द आंसर इज दैट ना ये कभी क्रिएट हुआ.
सी टाइम इज इटर्नल, इट्स अ साइकिल. और ये तो जो डायरेक्टर है इस ड्रामा का या जो इस ड्रामा से डिटैच होकर पूरे ड्रामा को देख रहा है, निराकार परमात्मा जिसे हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो सब स्वयं हमें इस समय का परिचय देते हैं कि ये समय भी एक चक्र है जिसको हम आज दिन तक काल चक्र कहते हैं. यू नो द वर्ल्ड इज अ ड्रामा. जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी भी तो एक एक्सपेरिमेंट है. एंड सारा कुछ क्योंकि यहाँ रिकॉर्डेड है, आत्मा ने कल भी देखा था, आज भी देख रहा है और जो कल आने वाला है वो भी देखा हुआ है. इट्स होल थिंग इज अ साइकिल,
साइक्लिक.
और इसलिए सारा कुछ यहाँ है. तो रिसर्च हम क्या करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं द माइंड विल स्लो डाउन एंड धीरे धीरे खुद से ही ये सारे आंसर्स मिलते हैं दैट येस आई कैन सी हाउ आई हैव ट्रेवल्ड ऑन दिस होल जर्नी. देन आई डो नॉट नीड एनी कॉन्सेप्ट, then I do not need any belief system. The time cyclic hai, and this even science has now started exploring, you know, that the world on a bigger level is also just a cycle of time. The cycle hai, isliye na uski kabhi shuruaat hai, aur na hi uska kabhi ant hai. It is a continuous interplay of energies. Neither gets created nor gets destroyed. To usse hume ek constant factor ye mil jata hai, ki atma ना क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है. इट्स अ फिक्स्ड नंबर, इट्स बेसिकली अ क्लोज्ड सिस्टम. अब ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसके ऊपर एनर्जी है ये, तो इसके ऊपर कुछ लॉज भी वर्क करते हैं, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट एनर्जी
कैन नीदर
बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इट्स अ कॉन्स्टेंट. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट. और ये हम प्रकृति में भी हर तरफ देखते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी या एक स्टेट ऑफ स्टिलनेस जो है, और उससे जब हम मूवमेंट या एक्शन में आते हैं तो एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, एंड धीरे 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 वो पोटेंशियल एनर्जी फिनिश हो जाती है. इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, या इसको हम लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं, जो हमें ये एक और चीज बताती है कि एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर, फिर धीरे धीरे वो ऑर्डर से केओस में जाती है. फर्स्ट इज इट इज इन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी
जो स्टिल है,
स्टिल है, तो इट इज इन एन ऑर्डर्ड स्टेट. फिर मूवमेंट एक्शन में आने से वो ऑर्डर्ड स्टेट से केओस में जाती है, अंटिल इट इज रिप्लेनिश्ड और रिचार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. मतलब कोई भी चीज जब एक सुषुप्त अवस्था में है, एक पोटेंशियल स्टेट में है, जब वो हलचल में आएगी या वो कर्म में आएगी, वो मूवमेंट में आएगी, एक्शन में आएगी, तो धीरे धीरे उसकी जो ऑर्डर्ड स्टेट है वो केओस में जाती जाएगी, डिसऑर्डर होता जाएगा. और फिर जब उसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो उसको रिचार्ज करेगी, तो फिर वो केओस की स्टेट से वापस ऑर्डर की स्टेट की तरफ चली जाती है. जैसे सूर्य की शक्ति है, सूर्य की शक्ति एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इस पृथ्वी को हर रोज रिप्लेनिश करती है, रिचार्ज करती है. इट्स द सन्स एनर्जी विच रिचार्जेस एंड रिन्यूज ऑल आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो इसी तरह ये भी एक सिस्टम है. अब इसको हम अगर बड़े लेवल पर देखें तो जैसे बैटरीज होती है, रिचार्जेबल बैटरी, इनिशियली इट इज इन अ स्टेबल स्टेट, बैटरी को आप यूज करते जाइए तो धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, वो फिर रिचार्ज हो जाती है। तो जब हम ये दो लॉज को देखते हैं इस सृष्टि पर वर्क करते हुए, नीदर गेट्स क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड दूसरा व्हेन इट कम्स इनटू मोशन इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, तो ये दो लॉज से हमें इस वर्ल्ड ड्रामा की पूरी नॉलेज मिलती है कि एक तो ये जो क्रिएशन है ये क्लोज्ड सिस्टम है, सोल्स एंड मैटर, आत्मा और प्रकृति, इसमें कभी कम और ज्यादा नहीं हो सकता। जितनी आत्माएं टोटल है वो उतनी ही टोटल है, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाली है। सेकंड, जब ये आत्माएं मूवमेंट या एक्शन में आती है, जब ये अपनी हाईएस्ट स्टेज में है,
जब वो स्टिल
स्टिल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, यू आर नॉट इन मूवमेंट, सो यू आर इन द हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्योरिटी, और इसलिए हमने कहा परम धाम में आत्मा परफेक्ट 100% प्योर 100% पीसफुल। सृष्टि पर आए, शरीर लिया, जैसे ही शरीर लिया कर्म करना शुरू कर दिया, मूवमेंट आई, सो देन दैट एनर्जी वंस इट कम्स इनटू मूवमेंट तो धीरे 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 इट इज मूविंग फ्रॉम अ ऑर्डर्ड स्टेट टू अ क्योटिक स्टेट, एंड क्योटिक खत्म होने से पहले इट विल हैव टू बी
रिप्लेनिश्ड।
अगर उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो वो वीकर एंड वीकर होता जाएगा, उसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से वापस क्योटिक स्टेट से ऑर्डर्ड स्टेट में लाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें फिर ये समझ में आता है कि जो इस समय की शुरुआत थी, वैसे तो कोई आंधी और अंत नहीं है, लेकिन अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट दें साइकिल को कि अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी टेकन एज दैट पॉइंट व्हेन द सोल इज इट एट इट्स एब्सोल्यूट
स्टिल
हाईएस्ट एनर्जी, और एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा,
जब होल ऑफ द एनर्जी इज फिनिश्ड, एक्चुअली
इट विल नॉट फिनिश टोटली बट वो उस स्टेज पर पहुंच जाएगी जब उसको आवश्यकता होगी,
हाँ, बाहरी एनर्जी की। तो हम, मुझे लगता है उस लेवल पे पहुंच गए हैं,
राइट, जहां तो जो आप जैसे कह रहे थे ना उस दिन कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका आगे क्या सोल्यूशन है, इट इज ओनली बिकॉज वी आर रीचिंग टूवर्ड्स दैट और वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर, जो वो केओटिक स्टेज है। हम शुरू हुए थे, सृष्टि चक्र शुरू हुआ था बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज से, लेकिन वो लॉ ऑफ एंट्रोपी वर्क करते करते इट इज रीच्ड दैट इज एब्सोल्यूट लोएस्ट स्टेज, एंड उसका असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, प्राकृतिक।
इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली द सोल एनर्जी जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक एनवायरमेंट मैटर एनर्जी,
बिकॉज सोल का प्रभाव एनवायरमेंट पे पड़ता है, सोल का प्रभाव ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट पे पड़ता है। आप देखो जब सोल वीक हो जाती है तभी तो प्रकृति को एक्सप्लॉइट करती है ना, अब जब सोल वापस रिचार्ज हो जाएगी तो प्रकृति तो ऑटोमेटिकली प्योरिफाई हो जाएगी, एंड दैट इज वाई वी अंडरस्टैंड कि हमें बाहर कुछ बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, यू नो द चार्जिंग हैज टू बी डन हियर, द प्योरिफिकेशन हैज टू बी डन हियर, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इफ वी सी दिस साइकिल, तो स्टार्टिंग ऑफ दिस साइकिल, रेफरेंस पॉइंट नॉट एक्चुअल स्टार्टिंग, वो होगा जब आत्मा बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज में है, एंड सो कॉल्ड एंड ऑफ द साइकिल वो वाला समय होगा जब वो हायर सोर्स को
जरूरत
पड़ेगी, इंटरवीन करना पड़ेगा, इस वर्ल्ड ड्रामा में इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर से वो आत्माएं जो कमजोर हो गई है उनको फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए। और ये हायर सोर्स क्या होगा जो इंटरवीन करेगा, ये वो सन नहीं हो सकता,
ये तो परमात्मा जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हमने इवन सोल्स की भी बात की है, जो पूरी बातचीत की है उसमें हम हर बार ये कहते हैं ना कि आप ये कहती आ रही हैं कि बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो यू टेक द एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम सोल।
व्हाई गॉड, परमात्मा वो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो कभी मूवमेंट में नहीं आते हैं,
तो उनके वो रिटेन रही है,
वो शरीर नहीं लेते हैं, हम आत्माएं शरीर लेती हैं, तो हम अपनी ओरिजिनल स्टेट ऑफ एनर्जी से केओटिक स्टेज तक आ गए, लेकिन परमात्मा वो शरीर नहीं लेते, तो ही रिटेन्स हिज इंट्रिंसिक बेसिक एनर्जी लेवल, एंड दैट एनर्जी विल देन कम एंड और नाउ कम्स एंड रिचार्जेस अस, सो दैट इज द बिगर साइकिल, कि हम थे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर थे, काम करते 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 लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर आ गए हैं, हायर सोर्स ऑफ एनर्जी अब इस क्लोज्ड सिस्टम में इंटरवीन करते हैं, सोल को दोबारा से चार्ज करते हैं, और जैसे ही सोल दोबारा से चार्ज होगी तो क्या हो जाएगा?
Again, we'll go back to that higher level.
Again, we'll go back to the higher level.
No, because the cycle also. You
yeah,
know, if we look
exactly.
at it, then now the next step should be that higher level, the जहाँ से हमने शुरू किया था.
Absolutely. क्योंकि the higher source is intervened now, ना? तो ordered state से chaotic stage में आए, क्योंकि हर चीज नई से पुरानी. अब
पुरानी से फिर नई पे जाएंगे.
अब chaotic stage से वापस ordered stage पे जाएंगे, क्योंकि वो higher source ने intervene कर दिया. So then we understand the world cycle very accurately. कि क्या समय था, वो highest stage एक समय पे थी, अब chaotic stage आ गई है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है. ये तो
यहाँ एक्चुअली सिस्टर शिवानी इंडिविजुअल तक जब हम बात कर रहे थे तब तो इट वॉज वेरी क्लियर, यू नो, लाइक आई कुड मेक इट आउट दैट ईच इंडिविजुअल हाउ वी मी यू कैन हैव अ कनेक्शन विद परमात्मा एंड हाउ वी कैन एक्चुअली रिचार्ज इंडिविजुअलिस्टिकली. But in the longer run, you know, in the larger perspective, when we look at it, how is he going to intervene? Like, you know, itna chaotic, pura jo samaj ka dhancha itna bure halat mein hai, wo kaise intervention?
To samaj ka dhancha kisne banaya is tarah se?
Haan, hum hi ne.
Atmaon ne. Wo paramatma aakar recharge kisko karte hain?
Atma ko.
Atma ko. Unhein koi physically change nahi karne ki zarurat hai kisi bhi cheez ko. Society is nothing but a reflection of the state of the soul. हम highest stage पे थे, use करते करते chaotic stage पर आए, source of energy ने intervene किया, charge किया, so we are again at a point जहाँ वो highest stage या वो ordered stage फिर से घूमनी शुरू हो जाएगी. तो we understand कि ये cycle भी एक bigger cycle है.
Repeat.
और इस cycle को अनेक civilizations में, हमारे शास्त्रों में भी, हर एक scripture में भी इसे एक्सेप्ट किया गया कि टाइम इज साइक्लिक. एक ऐसा समय था जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बहिष्ट कहते हैं, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, कितने शब्दों से उसको याद किया. वो क्या समय था? पैराडाइज हम किसको कहेंगे? वेयर एवरीथिंग वाज इन इट्स हाईएस्ट स्टेट. तो वो एक समय था, और हर धर्मशास्त्र हमें ये भी बताता है कि ऐसा वाला समय फिर से
आएगा,
फिर से आने वाला है.
Hmm.
अब हम उस समय के एज पर आकर खड़े हो गए हैं. तो जैसे हमने देखा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, साइकिल में घूमा, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, साइकिल. सिमिलरली ऑन अ बिगर पिक्चर, सतयुग, आपने उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हो रहा है, तो आपने कहा सच में ऐसा लगता है कि कलयुग चल रहा है. युग मतलब समय. कल युग, ये हमें किसने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये कल युग चल रहा है, फिर भी आत्मा के अंदर से कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि ये कल युग चल रहा है. तो कल युग अर्थात कलह कलेश का युग, जहां दुख, अशांति, भ्रष्टाचार चारों तरफ है. तो ये वो रात्रि का समय है, इसलिए हम इसको कल युग कहते हैं. तो सृष्टि का जो चक्र है वो भी इसी तरह चार स्टेजेस से गुजरता है. सतयुग, सत्यता का युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. और अब हम जहां आकर पहुंचे हैं वो कलयुग की भी अति. तो आपने कहा अति हो चुकी है, हर चीज की अति हो चुकी है. तो अति ही के बाद
अंत होगा?
तो अंत नहीं होगा ना, क्योंकि साइकिल है. तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इसी तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद
सतयुग. तो हमारी, हमने ही, यानी मैं या आप या जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सब वो ट्रैवल करके आए हैं चारों युग.
इसीलिए तो उसको याद करते हैं ना.
हाँ,
उसको याद करते हैं. यस, इसीलिए तो वो सुख की दुनिया याद आती है. जिसने सुख देखा नहीं होगा, देखो परम धाम क्यों याद आता
है? बिकॉज यू टोल्ड अस कि वहां आप हम रहे हुए हैं.
तो हम रहे हुए हैं इसलिए वो याद आता है. याद हर एक को क्या आएगा? सिर्फ जो सीन उन्होंने
देखा
होगा. जो सीन देखा ही नहीं है अगर,
यू कांट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन,
आपको कभी याद ही नहीं आएगा. यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, यू विल नॉट लुक फॉर इट, यू विल नॉट वॉन्ट इट,
यू विल नॉट नो इट.
यस, क्योंकि आत्मा ने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो उसकी लाइफ में वो एपिसोड ही नहीं है. तो इसलिए वो वाला एपिसोड उसको पता ही नहीं चलेगा, उसने उसमें रोल प्ले ही नहीं किया था।
और इतनी शिद्दत से हम उसे याद करते हैं बिकॉज वी मस्ट हैव रियली एंजॉयड इट।
एब्सोल्युटली, क्योंकि हम कहते हैं ना सुख की दुनिया थी, तो उसको ऑब्वियसली याद किया था। तो इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी हम ऐसे समय पर आकर पहुंच गए हैं जहां हम खेलते खेलते थक गए हैं। मुक्ति भी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को ये याद है कि ऐसे समय पर जब हम खेलते खेलते थक गए थे तब हम थोड़ी देर के लिए घर गए थे, तो इसलिए आत्मा उस घर को याद करना अब फिर से शुरू कर रही है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड यहाँ है। तो बच्चा नीचे खेलने के लिए आया था, 4-5 घंटे अच्छी तरह से खेला, लेकिन खेलते खेलते
थक गया।
थका। पहले शुरू का खेल कैसा था?
वेरी इंटरेस्टिंग,
वेरी इंटरेस्टिंग,
बहुत अच्छा।
तो इसलिए जैसे कई बार लोग कहते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, इतना दुख होना था, इतनी अशांति थी, बट वो तो सिर्फ अभी का पाठ है। क्योंकि हम ड्रामा को कितने पाठ में देख रहे हैं, सिर्फ
जो हमारे परफेक्ट,
क्योंकि हम बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे तब हमें ये पता चलेगा कि वी हैड अ गुड टाइम, हमने बहुत अच्छा पीरियड एंजॉय किया है सारा। अब इतनी देर खेलते खेलते तो थकेंगे ही ना, क्या ये हो सकता है कि हम थके ही ना इसलिए हम खेलेंगे ही नहीं? कि नहीं, इससे अच्छा तो हम ऊपर ही बैठे रहते, अगर इतना ही दुख फिर से देखना था इससे अच्छा हम आते ही नहीं। तो नहीं, हम सृष्टि पर आते हैं, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, 4 घंटे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग।
लेकिन अब हम वापस जाएं, क्योंकि आपने बीच में एक बार कहा था कि इस शरीर को छोड़ के जो सोल है वो वापस नहीं जाती है, वो दूसरी बॉडी ले लेती है।
एंड आई सेट टिल वन पर्टिकुलर टाइम।
हाँ, सो दैट पर्टिकुलर टाइम हैज कम,
टिल वन पर्टिकुलर टाइम। इट्स लाइक सेइंग के यू नो एक ड्रामा है, स्टेज पर चलता है, हम सब एक्टर्स बैक स्टेज है, ठीक है? अपने अपने रोल के अनुसार जब हमें क्यू दिया जाता है हम बैक स्टेज से फ्रंट पे आ जाते हैं स्टेज पर। और ये ड्रामा ऐसा है कि एक बार एक्टर स्टेज पर आते हैं फिर उनका रोल स्टेज पर ही है टिल द एंड ऑफ द शो।
नाउ द एंड ऑफ द शो इज कमिंग।
एंड ऑफ द शो तब होता है जब सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते
हैं।
एंड ऑफ द शो इज कमिंग, ओ नो दैट यू विल हैव टू आंसर नाउ। We just discussed in the last episode that the end of the show is.
I think it looks like that
yeah,
end of the show.
It's not the end of the show. It's the beginning of the next show.
So, but for that, all of us will have to go
back. इसीलिए तो population देखो कितनी drastically बढ़ रही है। जो हमने देखा कि 150 वर्ष पहले सिर्फ 100 करोड़ population थी। आज 650 करोड़ population सिर्फ 150 वर्ष में बढ़ी है। Just 150 years. 150 वर्ष पहले इस सृष्टि के ऊपर सिर्फ सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका बेसिक रीजन पॉपुलेशन।
बिकॉज नीड टू डेवलप न्यू
रिसोर्सेज उतना ही है ना, आपकी पृथ्वी उतनी है, पानी उतना ही है, हरियाली उतनी ही है, और आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से 650 करोड़ हो गई। तो ये तो वैसे ही हुआ कि घर में खाना तो उतना ही है, 4 लोगों की जगह 40 लोग हो गए, खाना तो कम पड़ेगा ही। और फिर जब खाना कम पड़ा तो हमने एक दूसरे की थाली से
छीनना शुरू कर दिया।
जब हम 4 लोग थे तब हम एक दूसरे की थाली से छीनते नहीं थे, तब हम आपस में बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन जब 40 लोग आ गए उसी घर के अंदर तो घर का वायुमंडल कैसा हो जाएगा?
डेफिनेटली
हर बात में खींचतानी हो जाएगी, और हर एक के अंदर ये डर बना रहेगा कि खाना तो इतना ही है, अब इनके खाने से पहले मैं ले लूं, तो क्या ये घर में सत्ययुग से कलयुग नहीं बन गया? जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। तो 150 वर्ष पहले अगर हम चले जाएं तो इस सृष्टि के ऊपर सिर्फ 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? बस बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सो ऑल दिस थकावट वाला पीरियड जो चीटिंग एंड थकना, वो कब हुआ? वो तो सिर्फ अभी अभी में हुआ, लेकिन उससे पहले तो ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब हम एंडिंग वाले पीरियड में आए हैं, तो एंडिंग में तो थोड़ी सी थकावट तो होगी ना, और हमने इतने सारे कर्म जो किए। तो आत्मा स्टेज पर आने के बाद बीच में वापस नहीं जाती है, यू नो आप सत्ययुग में जब फर्स्ट आए उसके बाद आप स्टेज पर ही हैं।
अच्छा, सत्ययुग से हम ही चले जा रहे हैं?
जो भी जो आत्माएं सत्युग में आई वो स्टेज पर ही है, लेकिन सत्युग से कलयुग के अंत तक बीच में परमधाम वापस घर नहीं जाती है, और इसलिए पॉपुलेशन कभी भी
कम नहीं होती। लेकिन वो जो ज्यादा होती है, इट मीन्स सत्युग में जितने लोग थे तो वो बीच बीच में और आते गए।
हाँ, इसीलिए तो अभी तो हमने देखा कि 150 वर्ष पहले ही 100 करोड़ पॉपुलेशन थी।
बट देन इट मीन्स देवर देयर इन परमधाम ऑल दैट टाइम इन ऑल दीज थ्री युग्स एंड देन कलयुग में आते ही
बिल्कुल
दे ऑल कम।
जो 550 करोड़ आत्माएं सिर्फ इस 150 साल के अंदर आई है तो वो 550 करोड़ आत्माएं कहाँ होंगे?
वो परमधाम में थे।
तो हर आत्मा अपने, इसीलिए बैक स्टेज, क्योंकि हर आत्मा का डिफरेंट रोल है।
ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, अगेन यू नो लाइक इसको एक्सेप्ट करने में भी अगेन अनुभव के बाद ही हम, और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही, खुद अपने अंदर सोचने के बाद, खंगालने के बाद ही इसे स्वीकारते हैं हम हर बार की तरह। बस इससे शिवानी ये अच्छी आपने हमें बात बताई कि एटलीस्ट अभी भी वक्त है और एक साइकिल है, एक चक्र है, काल चक्र की जैसे हम बात करते आ रहे हैं, तो वक्त है कि एक सुंदर युग इंतजार कर रहा है
और उसको हम देखें कि क्या वो क्या है,
आगे क्या होगा, क्या है वो सुंदर युग और कौन कौन वहां तक पहुंचेगा। ये भी एक नई बात हमारे सामने आई है। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया
आपका।
ओम शांति। समय चक्र, सदियों से सुनते आ रहे थे इस शब्द को, कब से काल चक्र की बात करते थे, लेकिन ये लॉजिकली अगर हम देखें तो बात समझ में आती है कि समय जो है वो एक साइकिल की तरह है और जो पीछे बीता है वो फिर आगे आता है, और ये साइकिल किस तरह से चलता है, सुबह से लेकर रात तक का सफर अगर हम कहें, या सत्युग से लेकर कलयुग तक का सफर,